लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि श्रम के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति परिपूर्णता हासिल करे, परिवारों का भरण पोषण प्रतिष्ठापूर्ण ढंग से हो सके तथा समाज को मानवीय बनाया जा सके। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है विभिन्न ख्रिस्त समुदायों एवं विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों से पोप लियो 14वें की मुलाकात पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। अपने परमाध्यक्ष प्रेरिताई के उद्घाटन के लिए आयोजित समारोह क्रिस्त्याग के दूसरे दिन, जिसमें करीब 2,00,000 लोगों ने भाग लिया, पोप लियो 14वें ने अन्य कलीसियाओं, कलीसियाई समुदायों और अन्य धर्मों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और अपने पूर्वाधिकारी की ख्रिस्ते एकतावर्धक वार्ता एवं अंतर्धार्मिक संवाद के प्रति प्रतिबद्धता को याद किया। संत पापा ने कहा,
cari fratelli e sorelle, con grande gioia rivolgo il mio saluto cordiale a tutti voi, rappresentanti di altre chiese e comunità ecclesiali, come pure di altre religioni.
प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं बड़ी खुशी के साथ आप सभी को, अन्य कलीसियाओं और कलीसियाई समुदायों, साथ ही अन्य धर्मों के प्रतिनिधियों का अभिवादन करता हूं, जिन्होंने रोम के धर्माध्यक्ष एवं संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी के रूप में मेरी प्रेरिताई के उद्घाटन समारोह में भाग लिया है। मैं परम पावन बर्थोलोमियो, परम पावन थियोफिलोस तृतीय और परम पावन मार आवा तृतीय के प्रति भाईचारे का स्नेह व्यक्त करता हूँ और आप में से प्रत्येक के प्रति आपकी उपस्थिति एवं प्रार्थनाओं के लिए आभारी हूँ, जो एक बड़ी सांत्वना एवं प्रोत्साहन है। उन्होंने कहा,
Uno dei punti forti del pontificato di Papa Francesco è stato quello della fraternità universale.
पोप फ्रांसिस के परमाध्यक्ष काल का एक मजबूत बिंदु रहा है विश्व बंधुत्व। इस संबंध में पवित्र आत्मा ने उन्हें पहले के संत पापाओं द्वारा पहले से किए गए प्रयासों को आगे बढ़ाने हेतु प्रेरित किया, खासकर संत जॉन 23वें के बाद से। पोप फ्रांसिस के विश्व पत्र फ्रतेली तुत्ती ने ख्रिस्त एकता के मार्ग एवं अंतर्धार्मिक संवाद दोनों को बढ़ावा दिया। उन्होंने ऐसा सबसे बढ़कर पारस्परिक संबंधों को विकसित करके किया और कलीसियाई संबंधों से कुछ भी छीने बिना मुलाकात के मानवीय गुणों को हमेशा महत्व दिया। ईश्वर हमें उनकी गवाही को संजोने में मदद करें। इतिहास से खुद को जोड़ते हुए संत पाप लियो 14वें ने कहा, मेरा चुनाव निकेया की प्रथम महासभा के 17वें वर्षगांठ के वर्ष के दौरान हुआ है। महासभा जो सभी कलीसियाओं और कलीसियाई समुदायों द्वारा साझा किए गए धर्मसार के निर्माण में एक मील का पत्थर है।
Mentre siamo in cammino verso il ristabilimento della piena comunione tra tutti i cristiani, riconosciamo che questa unità non può che essere unità nella fede.
जब हम सभी ख्रिस्त अपने बीच पूर्ण सामंजस्य को फिर से स्थापित करने की यात्रा पर हैं, हम मानते हैं कि यह एकता केवल विश्वास में एकता हो सकती है। रोम के धर्माध्यक्ष के रूप में पोप लियो 14वें ने कहा,
In quanto vescovo di Roma, considero uno dei miei doveri prioritari.
मैं अपनी प्राथमिकताओं में से एक को उन सभी लोगों के बीच पूर्ण और दृश्यमान सामंजस्य की पुनर्स्थापना की तलाश करना मानता हूँ, जो पिता, पुत्र और पौत्र आत्मा में एक ही विश्वास रखते हैं। वास्तव में एकता हमेशा से मेरी चिंता का विषय रही है। यह मेरे धर्माध्यक्ष प्रेरिताई के लिए चुने गए आदर्श वाक्य से पता चलता है।
In illo uno unum।
इसे हिप्पो के संत अगस्तीन की एक अभिव्यक्ति से लिया गया है जो हमें याद दिलाता है कि हम भी यद्यपि अनेक हैं, एक अर्थात मसीह में हम एक हैं। इससे भी बढ़कर हमारी एकजुटता उस विस्तार तक साकार होती है जिस विस्तार में हम प्रभु यीशु मसीह से मिलते हैं। हम जितने अधिक उनके प्रति वफादार और आज्ञाकारी होते हम आपस में उतने ही अधिक एकजुट होते हैं। इसलिए हम सभी ख्रिस्तियों को इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रार्थना करने और एक साथ काम करने हेतु बुलाया जाता है जो पौत्र आत्मा का कार्य है। संत पाप ने इस बात पर गौर करते हुए कि सिनोडालिटी और ख्रिस्ती एकता आपस में घनिष्ठता से जुड़े हैं कलीसिया की एक साथ चलने की प्रकृति को बढ़ावा देने और ख्रिस्ती एकता संबंधों में और अधिक मजबूत धर्म सभा के लिए नए और ठोस रूपों को विकसित करने हेतु उन्हें पोप फ्रांसिस की प्रतिबद्धता को जारी रखने के अपने इरादे का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा,
La nostra comunione si realizza infatti nella misura in cui convergiamo nel Signore Gesù।
हमारे साझा मार्ग को मानवीय भाईचारे की भावना में सभी को शामिल करने के व्यापक अर्थ में समझा जाना चाहिए। यह संवाद और पुल बनाने का समय है। इसलिए पोप ने अन्य धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति से प्रसन्नता एवं कृतज्ञता व्यक्त की जो ईश्वर और उनकी इच्छा की खोज में शामिल हैं, जो हमेशा सभी के लिए प्रेम एवं जीवन की इच्छा रखते हैं। अंत धार्मिक संवाद के संदर्भ में पोप फ्रांसिस के कार्यों की सराहना करते हुए पोप लियो चौदहवें ने कहा, आपने अंत धार्मिक संवाद के पक्ष में पोप फ्रांसिस द्वारा किए गए उल्लेखनीय प्रयासों को देखा है। अपने शब्दों और कार्यों के माध्यम से उन्होंने मार्ग के रूप में संवाद की संस्कृति, आचार संहिता के रूप में पारस्परिक सहयोग, विधि एवं मानक के रूप में पारस्परिक समझ को बढ़ावा देने के लिए मुलाकात के नए रास्ते खोले। मैं अंतर धार्मिक संवाद विभाग को मानव बंधुत्व पर आधारित संबंधों के निर्माण के उद्देश्य से मुलाकातों और ठोस आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने के इस धैर्यपूर्ण कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। विशेषकर मैं यहूदी और मुसलमान भाई बहनों का अभिवादन करता हूँ। ख्रिस्त धर्म की यहूदी जड़ों के कारण सभी ख्रिस्तियों का यहूदी धर्म के साथ एक विशेष संबंध है। महासभा के घोषणा पत्र नोस्ट्रा एटाते ख्रिस्तियों और यहूदियों द्वारा साझा की गई आध्यात्मिक विरासत की महानता पर जोर देता है जो आपसी ज्ञान एवं सम्मान को प्रोत्साहित करता है। इस कठिन समय में जो युद्ध और गलत फहमी से चिन्हित है, यह आवश्यक है कि हमारी इस बहुमूल्य बातचीत की गति जारी रहे। संत पापा ने विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधियों के प्रति इस मुलाकात में उनकी भागीदारी और शांति में उनके योगदान के लिए अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, हिंसा और संघर्ष से त्रस्त विश्व में यहाँ उपस्थित प्रत्येक समुदाय मानवता की भलाई और हमारे आम घर के संरक्षण के लिए ज्ञान, करुणा और प्रतिबद्धता का अपना योगदान देता है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा, मैं मानता हूं कि यदि हम सहमत हैं तथा वैचारिक एवं राजनीतिक बंधनों से मुक्त हैं, तो हम युद्ध को नहीं और शांति को हाँ कहने, हथियारों की दौड़ को नहीं और निरस्त्रीकरण को हाँ कहने, लोगों एवं पृथ्वी को दरिद्र बनाने वाली अर्थव्यवस्था को नहीं कहने तथा समग्र विकास को हाँ कहने में प्रभावी हो सकते हैं। हमारे बंधुत्व का साक्ष्य जिससे हम प्रभावी संकेतों के साथ देने में सक्षम होंगे, निश्चित रूप से एक अधिक शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण में योगदान देगा जिसकी चाह सभी भले पुरुष एवं महिलाएं अपने दिलों में रखते हैं। अंत में संत पापा ने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा,
Carissimi, grazie ancora della vostra vicinanza।
प्रिय मित्रों, आपके सामीप्य के लिए धन्यवाद। आइए हम अपने दिलों में ईश्वर का आशीर्वाद मांगें। उनकी असीम भलाई एवं प्रज्ञा हमें अपने बेटे बेटियों और एक दूसरे के भाई बहनों के रूप में जीने में मदद करे ताकि दुनिया में आशा बढ़े।
Perché cresca nel mondo la speranza. Vi ringrazio di cuore.
गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। जीवन अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई, जीवन अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई, शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई, शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई। यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने सोमवार सुबह संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति श्री जेम्स डेविड वांस और अमेरिकी विदेश मंत्री श्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। इस मुलाकात में उनकी पत्नियां भी मौजूद थी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री ने रविवार सुबह संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में संत पापा के परमाध्यक्षीय प्रेरिताई उद्घाटन मिसा समारोह में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया था। अमेरिकी मूल के संत पापा लियो 14वें के साथ निजी मुलाकात के बाद श्री वांस ने राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलाघेर से मुलाकात की। राज्य सचिवालय में सौहार्दपूर्ण वार्ता के दौरान श्री वांस और महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने परम धर्म पीठ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अच्छे द्विपक्षीय संबंधों को दोहराया। उन्होंने कलीसिया और अमेरिकी सरकार के बीच सहयोग के साथ साथ कलीसियाई जीवन और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए विशेष प्रासंगिकता वाले कई मामलों पर भी चर्चा की। वाटिकन प्रेस कार्यालय ने कहा कि अंत में कुछ वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिसमें संघर्ष के क्षेत्रों में मानवीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान और इसमें शामिल पक्षों के बीच बातचीत के माध्यम से समाधान का आह्वान किया गया। और रविवार को अपने परमाध्यक्षीय प्रेरिताई के उद्घाटन मिसा समारोह के समापन पर संत पापा लियो 14वें ने स्वर्ग की रानी प्रार्थना का पाठ किया और युद्ध के कारण पीड़ित लोगों के लिए अपील की। उन्होंने मिसा समारोह में भाग लेने वाले करीब 2,00,000 लोगों और कई प्रतिनिधि मंडलों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रों, कलीसियाओं और विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त किया। संत पापा लियो ने कहा, विश्वास और मिलन के आनंद में हम अपने भाइयों और बहनों को नहीं भूल सकते जो युद्ध के कारण पीड़ित हैं। उन्होंने याद किया कि गाजा में बच्चे, परिवार और बुजुर्ग भुखमरी की स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि इसराइल हमास युद्ध जारी है। संत पापा ने कहा कि म्यांमार में नई शत्रुता ने निर्दोष युवा जीवन को समाप्त कर दिया है और उन्होंने दुख व्यक्त किया। शहीद यूक्रेन एक न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए वार्ता का इंतजार कर रहा है। पौत्र मिसा के बाद संत पापा लियो 14वें ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से निजी तौर पर मुलाकात की, जो अपनी पत्नी के साथ उद्घाटन मिसा समारोह में शामिल हुए थे। स्वर्ग की रानी प्रार्थना संबोधन में संत पापा ने कहा, उन्होंने स्वर्ग से हमारे साथ आए संत पापा फ्रांसिस की आध्यात्मिक उपस्थिति को दृढ़ता से महसूस किया। अपनी संत पेत्रुस की प्रेरिताई की आधिकारिक शुरुआत के अवसर पर संत पापा लियो 14वें ने कैथलिकों को अपनी प्रेरिताई धन्य कुंवारी मरियम को सौंपने के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया, जिन्हें समुद्र का तारा और अच्छी सलाह देने वाली माता के रूप में उनकी उपाधि दी गई। उन्होंने अंत में कहा, हम उनकी मध्यस्थता से शांति के उपहार के लिए, पीड़ितों के लिए समर्थन और आराम के लिए, और हम सभी के लिए पुनर्जीवित प्रभु के गवाह बनने की कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। और संत पापा के साथ शांति की अपनी अपील में शामिल होते हुए यरूशलेम के लैटिन प्राधिधर्माध्यक्ष कार्डिनल पियर बत्तीस्ता ने क्रिस्तीय समुदाय से गाजा में पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान किया। रविवार 18 मई को यरूशलेम के लैटिन प्राधिधर्माध्यक्ष कार्डिनल पियर बत्तीस्ता ने संत पापा लियो 14वें के साथ अपनी आवाज में आवाज मिलाई, जिन्होंने अपने प्रवचन और स्वर्ग की रानी प्रार्थना में अभिवादन के दौरान दुनिया के युद्धग्रस्त देशों में हिंसा को समाप्त करने का आह्वान किया। कार्डिनल पियर बत्तीस्ता ने SIR समाचार एजेंसी के साथ एक साक्षात्कार में कहा, दुनिया को जिस शांति की जरूरत है वह राजनीतिक शांति या केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एकमात्र शांति जो संघर्ष, विभाजन और घृणा से त्रस्त दुनिया की मदद कर सकती है, वह शांति जो मसीह से आती है। यरूशलेम के लैटिन प्रतिधर्माध्यक्ष ने उद्घाटन मिस्सा समारोह के दौरान संत पापा लियो के उपदेश पर विचार किया, जहां पेत्रुस से येसु ने कहा था, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? कार्डिनल पिज्जाबाला ने कहा, यह क्रिस्तीय जीवन का प्रतिमान बन गया जिसका परिणाम शांति है। उन्होंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति में ईश्वर और अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम है तो शांति स्वाभाविक रूप से आती है। प्राधिधर्माध्यक्ष ने तर्क दिया कि वह शांति जिसकी दुनिया भर में हम सभी को, लेकिन विशेष रूप से पवित्र भूमि को इसकी आवश्यकता है। उन्होंने कहा, हम सभी का कर्तव्य है कि हम स्थानीय ख्रिस्तियों की मदद करें, और उन्होंने एक स्पष्ट निर्देश जारी किया, हमें मदद पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। जब संत पापा लियो 14वें ने रविवार को संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में अपनी परमाध्यक्षीय प्रेरिताई के उद्घाटन मिसा समारोह मनाया, तो थाईलैंड के अंतरधार्मिक समुदाय के एक सम्मानित आवाज डॉक्टर बुनचुए डुजाई ने संत पापा की शांति और एकता के आह्वान पर अपना विचार पेश किया। उन्होंने कहा, संत पापा लियो 14वें नाम चुनकर वे कलीसिया की साहसिक सामाजिक शिक्षाओं की ओर लौटने का संकेत देते हैं। हमारे समय के वैश्विक विभाजन को ठीक करने के लिए न्याय, संवाद और एकता पर जोर देते हैं। उन्होंने कहा कि नए संत पापा का पहला सार्वजनिक संदेश अंग्रेजी के बजाय इतालवी में था, और पेरू में अपने पूर्व समुदाय के लिए स्पैनिश में उनका अभिवादन उनका समावेशी और प्रेरितिक प्राथमिकताओं के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। डॉक्टर बुनचुए ने कहा, उनके पहले शब्द लापाचे सिया कोन तुत्ती वोई, शांति आप सब के साथ हो, कैथोलिक धर्म विधि की प्रतिध्वनि थी, लेकिन स्पष्ट रूप से संघर्ष से त्रस्त दुनिया में शांति के लिए एक सार्वभौमिक आह्वान था। उद्घाटन समारोह के दौरान संत पापा लियो 14वें ने युद्ध से तबाह हुए क्षेत्रों में शांति के लिए अपनी अपील को दोहराया, जो उनके पूर्ववर्ती संत पापा फ्रांसिस के अंतिम सार्वजनिक शब्दों की प्रतिध्वनि थी। संत पापा लियो 14वें ने पास्का रविवार को संत पापा फ्रांसिस की अंतिम सार्वजनिक आशीर्वाद का जिक्र करते हुए कहा, उनकी आवाज आज भी हमारे कानों में गूंजती है, कोमल लेकिन हमेशा साहस से भरी हुई। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।